जहां एक तरफ आरव और आयु के बीच सब कुछ ठीक होने के कगार पर था, आर्या भी उन्हें मिल गया था और उसकी वजह से आयु को भी आरव पर यकीन होने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ माहिरा आरव के करीब जाने की पूरी तैयारी कर रही थी। आरव के बारे में पता लगाने के लिए उसने एक आदमी को भेजा था और अब वो उसके सामने आरव की पूरी डिटेल्स के साथ था। रात के लगभग 3 बजे के करीब माहिरा अपने डिटेक्टिव माधव मल्होत्रा के सामने बैठी थी। माहिरा एक फाइल पढ़ रही थी जो कि आरव की मेडिकल फाइल थी। उसे पढ़ते हुए माहिरा ने माधव की तरफ देखा तो माधव बोला, वो पूरी तरह से एंटी सोशल है और उसकी ये पर्सनालिटी उम्र के 5वें-6ठे साल में ही सामने आने लगी थी। वो अपने आसपास किसी को भी आने नहीं देना चाहता था। स्कूल में बुरे बर्ताव की वजह से उसे निकाल दिया गया था और उसकी होम स्कूलिंग हुई है। ग्रेट, जो पहले सोशल क्रीचर हुआ करता था उसे इस जन्म में अकेले रहना पसंद है। शायद इसी वजह से वो हॉस्पिटल जाता होगा और उस साइकेट्रिस्ट से मिलता होगा, माहिरा ने भौहें उठाकर कहा। माधव को उसकी बातें समझ तो नहीं आ रही थी, फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो किसी और रीज़न की वजह से साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। अर्ली होम स्कूलिंग के बाद युवराज खुराना ने उसे उस स्कूल और कॉलेज में भेजा जहां वो खुद ट्रस्टी था और आरव पर पूरी नज़र रखता था। आगे की स्टडी के लिए वो US गया था, उसका ध्यान रखने के लिए उसका कज़िन ब्रदर वेद उसके साथ था। माधव उसे आरव के इनिशियल लाइफ के बारे में बता रहा था, तभी माहिरा ने बोरियत भरे लहजे में कहा, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अच्छा हो तो बताओ, कोई लड़की थी उसकी लाइफ में? नहीं, लड़की तो कोई भी नहीं थी, वो किसी को अपने पास आने ही नहीं देना चाहता था, माधव ने जवाब दिया, जिस पर माहिरा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन उसकी यह मुस्कुराहट कुछ देर की ही थी। माधव ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, र्यूमर है कि उसकी शादी हो चुकी है। आरव की शादी का सुनकर माहिरा अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। वो थोड़ा अग्रेसिव होकर बोली, अफवाहों और सच्चाई में फ़र्क होता है, और मैंने तुम्हें सच्चाई पता करने के लिए भेजा था और ना कि अफवाहों पर ध्यान देने के लिए। मैं उसके घर गई थी, डिनर पर पूरी फैमिली मौजूद थी, अगर शादी हुई होती तो उसकी वाइफ भी वहाँ होती। माधव ने आगे कुछ नहीं कहा। फिर माहिरा ने उससे पूछा, तुमने ये नहीं बताया वो साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाता था? वो मामला थोड़ा सीरियस है, साइकेट्रिस्ट से मुलाकात हुई थी तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। मैंने एक आदमी को पैसे दिए थे, उसने आरव की फ़ाइल चुरा ली थी। शॉकिंग बात है, आरव खुराना को अजीब तरह के सपने आते हैं। मतलब उस फाइल के कंक्लूजन में डॉक्टर नेहा ने ये लिख रखा था कि उसका रीबर्थ हुआ है, उसे कुछ चीज़ें याद हैं कुछ नहीं, माधव ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर आगे बोला, माफ़ कर दीजिए, मैं ठीक से उसके बारे में पता नहीं लग पाया, मुझे तो वो पागल नज़र आता है, एक अकेला रहने वाला आदमी जिसे अजीब तरह के हैलुसिनेशन होते हैं, अजीब सपने आते हैं और जिसे ये लगता है उसका फिर से जन्म हुआ है। पैसों के चक्कर में मिस्टर खुराना ने सब कुछ दबा दिया होगा, वरना आरव खुराना अब तक मेंटल असाइलम। माधव अपनी राय रख रहा था, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि माहिरा गुस्से में उठी और उसका गला पकड़ लिया। माहिरा की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थीं और माधव ने आरव के बारे में जो भी कहा था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो माधव का गला दबाते हुए बोली, अपनी औकात में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पागल कहने की? मेंटल असाइलम में उसे नहीं तुम्हें होना चाहिए, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। माहिरा कैसी थी ये माधव से छुपा हुआ नहीं था, वो उसके लिए काम करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक माहिरा इतना गुस्सा क्यों हो गई, लेकिन वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजने का कह रही है तो वो ऐसा ज़रूर करेगी। डरकर माधव ने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माहिरा लूथरा किसी को भी दूसरा चांस नहीं देती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आरव को पागल कहने की? माहिरा उस पर चिल्लाकर बोली और तुरंत किसी को कॉल किया। लगभग 10 मिनट बाद कुछ आदमी आए जो माधव को पकड़ कर ले गए। इस 10 मिनट में माधव माहिरा के सामने हर तरह से माफ़ी मांग रहा था, फिर भी उसने उसकी एक नहीं सुनी। माधव को ले जाया जा चुका था। उसके जाने के बाद माहिरा ने फाइल उठाई और फिर उसे देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तो तुम्हें कुछ बातें याद हैं? कौन याद है तुम्हें आरव? मैं, आयु या फिर कुछ और भी? माहिरा ने वो फाइल खोली तो उसने आरव के सपनों के बारे में लिखा हुआ था। जिस आदमी ने भी वो फाइल चुराई थी वो पुरानी फाइल थी और इसमें आरव के सपनों में सिर्फ वही बातें लिखी हुई थीं जो आखिरी वक्त में उसके साथ हुई थीं। होटल साज में हुआ वो एक्सीडेंट जिसमें आरव की मौत हुई थी और वो आयु को बचाने के लिए भाग रहा था। उसे देखते ही माहिरा ने राहत की सांस ली। वो खुद से बोली, डॉक्टर से मिलना होगा, तुम्हारे दिमाग से ये बातें निकालनी होंगी आरव, कहीं गलती से भी तुम्हें पुरानी बातें याद आ गई तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे और ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारे दिमाग में मेरी ही यादें होनी चाहिए, ना कि अपनी पत्नी से जुड़ी हुई कोई भी बुरी याद।
उन सभी फाइल्स को उठाकर माहिरा अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई। अगली सुबह आरव की आंख खुली तो आयु उसकी बाहों में सिमट कर सोई हुई थी। रात को लेट सोने की वजह से आयु की आंख नहीं खुली थी और आरव उससे पहले उठ गया था। आरव ने आयु को अपने इतने करीब देखा तो उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। उसके ऐसा करने पर आयु की नींद टूटी। आयु ने आरव को इतने करीब देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आयु आरव से अलग होने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसे और भी कसकर पकड़ रहा था। उसकी इस हरकत पर आयु ने कहा, क्या कर रहे हो आरव, मुझे कुछ याद नहीं है, तुम फायदा मत उठाओ मेरा। अच्छा जी, मैं फायदा उठा रहा हूँ? रात को मैं पहले सोया था और तुम बाद में। वैसे मेरे सोने के बाद मेरे करीब आकर कौन सोया था? आरव ने भौहें उठाकर कहा। तुम्हारे पास सोई थी, तुम्हारे चिपक कर नहीं। जरूर तुम ही रात को मेरे पास आए होगे, वैसे भी तुम्हें मेरे क्लोज आना होता है, आयु ने जवाब में कहा। हाँ क्लोज तो आना है, पर इस बार मैं एंटी सोशल हूँ। पुरानी बातें याद आ गई पर फिर भी इस चीज को मैं बदल नहीं सकता। मैं किसी भी इंसान को इतना टाइटली हक करके नहीं सोने वाला, चाहे वो मेरी इस या पिछले जन्म की वाइफ ही क्यों ना हो। सो इस बार तो सिचुएशन का एडवांटेज तुमने ही उठाया है मिसेस खुराना, आरव आयु को परेशान करते हुए बोला तो वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। आरव आयु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आयु उसकी तरफ लाचारी से देखते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो, हॉस्पिटल जाना है, आर्या आ गया तो क्या सोचेगा। आयु की बात सुनकर आरव ने आईज रोल करके कहा, अच्छा आर्या आ गया तो क्या सोचेगा, वो कोई 4 साल का बच्चा नहीं जो बिना नॉक किए कमरे में घुस जाएगा, और न ही उसके पास कोई सुपर पावर है कि वो एक लॉक कमरे में अचानक से प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा आर्या अब उम्र में तुमसे भी बड़ा है। अब ये सिली बहाने बनाना बंद करो मिसेस खुराना और चुपचाप लेटी रहो। हॉस्पिटल तो जाना है ना, आयु ने धीरे से कहा। कहा ना मिसेस खुराना, आज तुम्हारा कोई भी बहाना और किस्मत दोनों ही तुम्हारा साथ नहीं देने वाली है, संडे है आज, आरव ने तिरछा मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, अब तो छोड़ दो, आयु ने चिर पर कहा, जिस पर आरव के चेहरे पर इविल स्माइल थी।
आरव बोला, रियली अनकंफर्टेबल हो रही हो, उसके बावजूद भी मुझसे दूर होने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मुझे हमारे कमरे में कैमराज लगा देने चाहिए ताकि सुबह तुम्हें दिखा सकूं कि कौन किसके करीब आया था। आरव की बातों से आयु समझ गई थी कि वो उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वॉशरूम जाना है आरव, अब तो छोड़ दो। हाँ तो जाओ, पकड़ा किसने है, आरव एकदम से उसे छोड़ते हुए बोला तो आयु ने उसे घूरते हुए देखा और फिर दौड़कर बाथरूम में चली गई। जहाँ आरव के सामने वो गुस्सा कर रही थी, वहीं बाथरूम के अंदर आने के बाद उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। उसके गाल लाल हो रहे थे और वो ब्लश कर रही थी। बिल्कुल पागल है ये, आयु खुद से बड़बड़ाकर बोली। तभी उसे आरव की आवाज़ सुनाई दी, मैं आर्या से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आज का पूरा दिन हम तीनों साथ बिताने वाले हैं, हो सकता है हमें बाहर भी जाना पड़े, तो तुम निर्वाण से बात करके लीव ले लेना, आरव ने कहा और वहाँ से चला गया। तो वहीं आयु कंफ्यूज हो रही थी कि अचानक आरव उसे कहाँ ले जाना चाह रहा है। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था।